शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को सदा हमारा लक्ष्य याद दिलाते हैं, तुम क्या बन रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो देवताएं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, तो तुम बच्चों को भी सर्वगुणों से संपन्न बनना है। तुम बच्चों को भी संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पर फिर साथ में बाबा कहते, तुम देवता बन रहे हो तो कितना नशा भी होना चाहिए, हाँ? और विश्व के मालिक बन रहे हो, राजाओं का राजा बन रहे हो, तो वो नशा होना चाहिए। पर वो नशा हमारा कैसे दिखाई देगा? नशा कोई वो नशा नहीं जो दुनिया में नशा करते हैं या नशा दिखाते हैं, पीते हैं, खाते हैं नशा, या पहनावा से नशा, या कोई रहन सहन का नशा। लेकिन हमारा नशा आंतरिक है, तो वो आंतरिक जो नशा है वो बाहर किस रूप में दिखाई देगा? तो बाबा कहते हैं रमणीकता के रूप में तुम रमणीक बनेंगे। रमणीक शब्द के अंदर बहुत गहराई है। रमणीक माना केवल हंसाने वाला नहीं, वैसे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये दिया है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग का कई बार अर्थ होता है हंसाने वाला, जैसे जोकर होते हैं ना, हंसाने वाले, तो वैसा एंटरटेनिंग नहीं। लेकिन जब बाबा कहते रमणीक माना इतना आकर्षक, आकर्षित, आकर्षण करने वाला होना चाहिए। लेकिन वो आकर्षण कोई बाह्य रूप का नहीं, लेकिन आंतरिक आत्मा का आकर्षण, जिसको बाबा कहते हमारी पवित्रता का आकर्षण। देवताएं इतने आकर्षित मूरत क्यों है? क्योंकि वो रमणीक है, बहुत आकर्षित करते हैं। और वो किस आधार पर है? उनकी पवित्रता के आधार पर है, केवल वस्त्रों के आधार पर नहीं है। उनकी पवित्रता ही सबको आकर्षित करती है। जो बड़े बड़े लोग भी उनके आगे झुकते हैं, सन्यासी भी झुकते हैं। तो वो आकर्षण हो हमारे अंदर, वो पवित्रता दिखाई दे। लेकिन जितना ही हम हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो, उतना ही बाबा कहते सिंपल भी हो, बहुत साधारण हो। और उसमें ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण थे। साधारण वस्त्र पहनते थे, कोई बहुत कोई गेरुए वस्त्र, कोई श्रृंगार, उस प्रकार का कुछ भी नहीं था बाबा का, सिंपल थे। लेकिन वो सिंपलिसिटी में, साधारणता में भी इतना आकर्षण था, उनकी पवित्रता का आकर्षण, ज्ञान का आकर्षण, गुणों का आकर्षण। तो वो आकर्षण ही वास्तव में रमणीकता का स्वरूप है। गंभीर भी थे तो साथ साथ हर्षित मुख भी थे, ये वंडरफुल बैलेंस बाबा में था। तो इसीलिए बाबा कहते तुमको भी ऐसे रमणीक बनना है। और फिर बाबा कहते वो तब बनेंगे जब इस समय राज ऋषि होंगे। राजाई पा रहे हो उसका नशा, लेकिन साथ साथ ऋषि भी। ऋषि माना बिल्कुल वैराग, तो अंदर से बिल्कुल वैराग है, पर पता है कि हम राजा बनेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे। और उसका मिसाल बाबा क्या देते हैं, जब कुमारी सगाई करती है तो शादी के एक दिन पहले वनवा में रहती है, तो वनवा की स्थिति का कारण क्या है? ताकि किसी भी प्रकार का आकर्षण न हो, वो बस जो होने वाला पति है उसी को याद करना है। सिंपल ड्रेस में होती है, बहुत साधारण, लेकिन अंदर में नशा है कि कल मैं ससुराल जाऊंगी, कल मैं खूब श्रृंगार करूंगी, पर आज मुझे वनवा में रहना है। तो बाबा कहते तुम राज ऋषि भी हो, तुम वनवा में भी हो, लेकिन इस समय का भले साधारण हो लेकिन पवित्रता का आकर्षण अनेक आत्माओं को खींचना चाहिए, तब वो आत्माएं आपके करीब आएगी और झुकेगी। तो अंत में तो सब झुकेंगे ना। जब बाबा कहते तुम्हारा जय जयकार होगा तो जय जयकार किस आधार पर होगा, जब वो हमारा वो आकर्षण अनुभव करेंगे और हमारी पवित्रता के आकर्षण से झुकेंगे। तो आज की बाबा की मुरली बहुत ही गहरी है, उसी रूप से हम सुनेंगे। या हमें साधारण रहना है, बहुत शो नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, सिंपल। दादी जी भी सदा कहती थी सिंपल एंड ब्यूटीफुल, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। हर बात में दादी कहती थी मकान भी बनाओ सिंपल पर ब्यूटीफुल, तो सुंदर भी हो, आकर्षक रूप भी हो, परंतु सिंपल भी हो। ये दोनों ही स्वरूप एक बैलेंस रूप में हो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो आज 4/4/26 है। मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। रमणीक शब्द में बहुत गहराई है। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है जिनके कारण उनकी इतनी कशिश होती है? उत्तर है देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर उस मुस्कुराहट में गंभीरता भी है, उस मुस्कुराहट में सारे गुण भी समाये हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य उनके आगे झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं, कौन बन सकते रमणीक, जिनमें सर्वदैवी गुण है। सारे दैवी गुण हो तब रमणीक कहला सकेंगे। वो सदा खुश रहते हैं। अगर गमगीन चेहरा है, दुखी चेहरा है, चिंतित चेहरा है, तो वो आकर्षित थोड़ी करते और एक दूसरे को भी उदास बना देते, दूसरे को भी चिंता मिला देते, भाई ये इतना व्यक्ति चिंतित क्यों है। पर अगर हम खुशी में है, वो रमणीकता है, वो आकर्षण है, तो दूसरे भी उसी अनुसार खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बाबा कहते हैं रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। देवताएं रमणीक है पर लक्ष्मी नारायण की रमणीकता और फिर वो दास दासी की रमणीकता, प्रजा की रमणीकता, उसमें भी तो अंतर होगा ना। तो बाबा कहते हैं परंतु राजधानी बहुत बड़ी है, सब एक रस रमणी खो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर, तो संगम पर भी हमें वैसे रमणीक बनना है। परंतु बाबा कहते सब नहीं है, कोई कोई है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। राधे कृष्ण में बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की। क्योंकि इनकी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र आत्माओं को कशिश करती है, इसलिए वो उनके आगे झुकती है। पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उनके चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है, देवताओं में कितनी ताकत है। भल सन्यासी हो परंतु वो भी देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। सन्यासी है, पवित्र रहते हैं, लेकिन देवताओं की पवित्रता कितनी ऊंची है जो सन्यासी भी उनके आगे झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, कई सन्यासी बहुत घमंडी होते हैं, झुकते नहीं है। फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है, किस बात की कशिश है? पवित्रता की। और जहां पवित्रता है वहां सब गुण आ जाते हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की, वो कशिश उनकी अभी तक भी चल रही है। उनकी जड़ मूर्तियों में भी इतनी कशिश है, तो जो वो चैतन्य होंगे तो कितनी कशिश होगी उनमें। तो बाबा कहते हैं वो कशिश उनकी अभी तक भी चल रही है, तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। आत्माएं आपके आगे आए और झुके, इतनी वो कशिश होनी चाहिए। हाँ, वो स्थूल कशिश नहीं। ये कितनी सुंदर है, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर गहने पहने हैं, वो कशिश नहीं। लेकिन हमारी पवित्रता की कशिश उनको झुकाए। तो बाबा कहते हैं तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतने ऊंचे देवता बनेंगे, तो उनकी पवित्रता भी इतनी ऊंची होगी, तब तो कशिश होगी। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, अविनाशी हो जाती है। सत्य त्रेता में तो जीवित रूप में हमारी कशिश होगी, फिर द्वापर कलयुग हमारे चित्रों में कशिश होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी कशिश अविनाशी हो जाएगी, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती है, नंबर वार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी। कैसी कशिश होगी? सब गुणों की कशिश होगी। वो मीठे होंगे, नम्र होंगे, पवित्रता की उनमें वो आकर्षण होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनमें यहाँ भी कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है। अब सबसे जास्ती कशिश कब होगी? उनमें है जास्ती कशिश जो खास याद की यात्रा में रहते हैं, अलफ और बे को याद करते हैं, उनमें बहुत कशिश होगी। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, तो ये याद की यात्रा में पवित्रता है तो इसलिए कशिश है। पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर क्या करती है, पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है, फिर वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी पढ़ेंगे, तो पढ़ाई भी अच्छी पढ़ेंगे, योग भी अच्छा लगाएंगे, सारे गुण भी होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनसे कशिश आएगी ना। तो बाबा कहते पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है, ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके यानी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो, उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा, सत्युग में तो याद नहीं करते, लेकिन पूर्व जन्म में लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने कितना शिव बाबा को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वो जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो, हम किस लिए आए हैं, ऐसा ऊंचा लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए आए हैं। बाप दैत तुमको राजयोग सिखाते हैं, ये तो पक्का पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ये पक्का निश्चय है ना, उसी निश्चय से तुम यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही है जाने वाला है, तो ये गुण सदैव याद रहने चाहिए, सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे, कब रहेंगे सदैव हर्षित, जब बाप अलफ को याद करेंगे, बस अलफ और वे ये याद रहे तो सदा हर्षित रहेंगे और आप में से कशिश होगी सबको। सदा बाप की याद में रहेंगे, सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी, अलफ याद है तो अलफ परमात्मा क्या देने वाला है, बादशाही, तो वो बे भी याद रहेगी, और इससे तुम रमणीक भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि नशा है ना, हम क्या बन रहे हैं, तो रमणीक भी बहुत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे, यहाँ रमणीक होंगे, तब बाबा कहते भविष्य में तुम ऐसा रमणीक लक्ष्मी नारायण की तरह बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है, यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा, शिव बाबा क्या है, सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, सच्ची कमाई सच्चा बाबा तुमको करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है, 21 जन्मों के लिए साथ चलती है ये सच्ची कमाई। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हैं वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, थोड़ा बहुत जो दान पुण्य भी करते हैं उनसे भी प्राप्ति होती है, पुण्य कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे भी तो अल्पकाल सुख तो मिलता है, अथवा वो जो कमाई करते हैं नौकरी धंधा उससे भी अल्पकाल का सुख मिलता है, पर वो कोई सदैव साथ नहीं देती, सदैव साथ नहीं देती। एक जन्म में कुछ किया तो अगले जन्म में उसकी प्राप्ति हुई, फिर उस जन्म में करना पड़े तब अगले जन्म में प्राप्ति हुई, एक जन्म की प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हैं वो तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वो कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में क्या है, बाबा कहते इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, सच्चा बाप मिला है, सच्ची कमाई कर रहे हैं, लेकिन किस बात में खबरदार रहना है, साधारण रहना है, हाँ बड़ा वो अभिमान नहीं दिखाना है। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में आते हैं, जिस तन में आकर पढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं वो भी कितना साधारण रूप में है। तो बिल्कुल साधारण रूप में है जो तुमको पढ़ाते हैं, तो पढ़ने वाले भी तो साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जाएगी, नहीं तो लज्जाएगी। क्या लज्जाएगी? हाँ, अगर हम साधारण रूप में नहीं आकर यहाँ पढ़ते हैं, बड़े फैशनेबल कपड़े पहन कर आते हैं, गहने वहने पहन कर आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे तो कितने सिंपल ड्रेस में हैं, सफेद ड्रेस में हैं, तो लजाती ना कि हम इतने फैशनेबल होकर के यहाँ बैठते हैं। तो हमने देखा, एक माता आई थी, उस दिन जयंती बहन बता रही थी ना कि बिल्कुल जब पहले दिन आई तो इतने हीरे, इतने वो, पता नहीं इतना फैशन करके आई, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ तो सब सिंपल है, किसी को भी कोई गहने वहने नहीं है, तो दूसरे दिन क्या किया, सारे उसने गहने उतार दिए, वो जो हीरे वीरे के वो उनकी जो अंगूठियां थी सब निकाल दी। और वो फिर मेरे से मिलने आई, तो मैं मिली, तो मैंने कहा कल तो आपका तो बहुत श्रृंगार था, तो कहा मैंने देखा ना यहाँ तो सिर्फ सिंपल है, तो मुझे लजा गई और लजा आ गई और मैंने ये सब निकाल दिया, तो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में थी। तो बाबा कहते हैं तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लजा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने इनके आगे, ये कितने साधारण रहे, तो हम भी ऊंचे कपड़े कैसे पहने। और कई तो है जिनको सफेद कपड़े है ही नहीं, तो लज्जा बहुत आती है। हम तो यहाँ पर जैसे बगुले दिखाई देते हैं, सब हंस बैठे हैं, तो खास कहते हैं हमको सफेद शॉल दे दो कम से कम, ताकि वो दिखाई तो दे कि हम भी इनके साथ हैं। अब कपड़े और नहीं है तो रंगीन ही है, तो फिर वो सफेद शॉल ओढ़ लेते हैं ताकि हम भी इन जैसे साधारण दिखे। तो बाबा कहते हैं हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, उनको लजाती है। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं, क्यों साधारण रहते हैं बाबा मम्मा? क्योंकि वनवा में है, कल विवाह होगा, खूब श्रृंगार करेंगे, इसलिए आज कुछ भी नहीं पहनना है। तो इसीलिए क्योंकि साधारण रहते हैं, क्योंकि वनवा में है, अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है, शादी के एक दिन पहले वनवा में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ नहीं, अभी आज नहीं करनी है, इस जीवन में नहीं, फिर कल जब जाएंगे नई दुनिया में तब तो खूब शादवाना होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी तो वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, मतलब साधारण कपड़े, तेल आदि लगाती है, तो वो तेल लगाती है ना शरीर पर, हल्दी लगाती है, बहुत कुछ करती है, तो अगर बहुत अच्छे कपड़े पहने तो सब खराब हो जाएंगे, इसलिए सिंपल ड्रेस पहनती है, हल्दी लगाती है, तेल लगाती है। लेकिन हल्दी तेल में चमक बहुत आती है ना, जब धुलाई करते हैं तो अगले दिन उनमें चमक आ जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है तो ब्राह्मण द्वारा फिर सगाई होती है, ब्राह्मण बीच में आता है दोनों के बीच में, फिर सगाई कराता है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है, क्यों वनवा का रिवाज रखा है, शादी के एक दिन पहले बिल्कुल सिंपल, ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। कपड़े भी जो जब पहनते ना बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे तो अभिमान तो आता ही है ना, गो खूब गहने पहनेंगे तो अभिमान तो आता ही है ना, और यहाँ तो हमको अभिमान दिखाना ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्यों वनवा में रहनी, वो रिवाज क्यों है, क्योंकि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। किसको हल्की साड़ी है और दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, फिर थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, देखो ये तो कितनी ऊंची साड़ी पहनी और मेरी तो बहुत सिंपल है, लेकिन सबकी सिंपल है तो फिर कोई ईर्ष्या भी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं दूसरों को देखते कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो बनवा में है ही नहीं, हाँ देखो कैसी साड़ी पहनी है, तो ये तो बनवा में है ही नहीं। लेकिन तू बनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, साधारण रहो पर उस साधारण रूप में कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए, भले साधारण रूप है लेकिन इतना अंदर में नशा है तो उस रूप से आप किसको ज्ञान दो तो उसको भी तीर लग जाए। भाई बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ, तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे। साधारण कपड़े पहने हैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं तो क्या वो वंडर खाएंगे कि अरे इनमें तो कितना ऊंचा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है। ये गीता, ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। राजयोग क्या है? ये गीता का ज्ञान है जो भगवान ने दिया है। तो ऐसा नशा चढ़ता है, बाबा बच्चों से पूछते ऐसा नशा चढ़ता है, जैसे बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा इतना सिंपल लेकिन अंदर में इतना नशा, हाँ मम्मा भी इतनी सिंपल पर सदा हर्षित मुख, इतना अंदर में नशा। तो बाबा कहते जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, अब क्या मिसाल बाबा ने बताया, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं, बाबा क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ बाबा बाबा तो चौपड़ भी कुछ कभी कभी खेलते थे ना, बहुत कुछ ऐसे ही स्नेह में, तो कोई बच्चे आते थे तो बाबा खेलते थे परंतु सिंपल सिंपल कोई और रूप में। तो बाबा कहते थे जैसे अपना मिसाल देते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, अब कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ, शिव बाबा का मैं परिचय देता हूँ, कोई नया आ गया बाबा के सामने और वो देख रहा है बाबा खेल भी रहा सामने आ गया तो बाबा खड़े होकर के फिर उनको ज्ञान भी देने लगते हैं। तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ, योग की ताकत योग बल होने के कारण वो भी वहां ही खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाएगा बाबा के आगे, और बाबा तो कोई सिंपल ही कर रहे थे खेल ही कर रहे थे पर वो खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण इसमें इतनी ताकत, साधारण लेकिन कितना आकर्षण कितनी ताकत। फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं, जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएगा, चाहेगा मैं कुछ बोलूं लेकिन बाबा का आकर्षण इतना कि बाबा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा तो वो भी वाणी से परे हो जाएगा। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हो, अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु वो इतना आकर्षण नहीं है, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते पर वो आकर्षण क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, परंतु योग का जौहर नहीं है। हम तो देखते ना, हम लोग इतना भाषण करते थे, इतना क्लास कराते थे, फिर दादी आती थी और जैसे दादी आती थी तो सब माँ कैसे अलर्ट हो जाते, क्योंकि दादियों का आकर्षण ही अपना था, भले वो थोड़ा बोलते थे परंतु वो थोड़ा थोड़े में भी इतना आकर्षण होता था। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है, प्यूरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है, पवित्रता और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, वो तो जैसे धन बांट रहे हैं, ज्ञान धन, जैसे स्कूल में पढ़कर कोई बीए एमए आदि पढ़ते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा डिग्रियां होती है उतना बड़ा पोस्ट, बड़ी पोस्ट मिलती है, पद मिलता है। यहाँ की फिर दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यहाँ कोई बीए एमए डिग्री लेने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है, अब बनना है, बाबा जितना पवित्र बनना है। अभी है ये है एम ऑब्जेक्ट, हमको इन देवताओं जैसा भी बनना है, बाबा जैसा भी बनना है। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात में रहेंगे, कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, तरस आना चाहिए, कैसे आएगा तरस, क्या सोचेंगे, बेचारे अंधे हैं, अब कोई जिस किसी को दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन होता है तो उस पर तरस तो आती है ना। तो बाबा कहते हैं हम उनको रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं। अंधे को लाठी पकड़ा करके ले जाते हैं ना, उनको लाठी देते हैं, पकड़ो, फिर उनका हाथ भी पकड़ते हैं, ये सब अंधे हैं। अंधे है माना क्या नहीं है, उनको ज्ञान चक्षु है नहीं, ये आंखें तो है लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ तुम जान गए हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें अभी तक जो सुनते आए, सब भक्ति मार्ग की बातें। तुमको पहले भी पता था क्या, अब जो बाबा सुनाते वो पहले सब मालूम था क्या, तो बाबा उसमें एक बात सुनाते, तुमको पहले ये पता था क्या कि हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, ये चित्र क्यों बनाया है बापू, गांधी जी ने बनाया था ना ये चित्र, सी नो ईविल, हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, तीन बंदर दिखाए। तो बाबा पूछते हैं कि तुम ये बंदर क्यों दिखाए है, ये चित्र क्यों बनाया है। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, वहां तो मनुष्य को रखना चाहिए ना, बंदर क्यों दिखाया है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम जानते हो बंदर क्यों दिखाया, क्योंकि बंदर मिसर सब बन गए, तो अभी बंदर से मंदिर लायक बनना है। तो कोई भी बुरा मत सुनो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे, इसीलिए बंदर दिखाया बाबा कहते हैं। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, लेकिन नॉलेजफुल तो बन रहे हो लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, नशे में क्या कहते हैं, वाह बाबा, वाह बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर किया ही क्या, नशा हो, बाबा का बच्चा बना हूँ और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो फिर बच्चा बनकर किया ही क्या। रोज रात को अपना पोता मिल देखना है, बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मिल निकालना सहज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता है, गवर्नमेंट सर्विस तो कोई वो पोता नहीं थोड़ी रखते, हिसाब किताब नहीं रखते हम। उनको पता है महीने के अंत में हमको तनख्वाह मिलेगी बस। लेकिन व्यापारियों को तो रोज अपना हिसाब किताब देखना होता है, आज कितना घाटा हुआ कितना फायदा हुआ। तो बाबा कहते गवर्नमेंट सर्विस को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वो सौदागर होते हैं, व्यापारी नहीं होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे कैसे पोता मेल निकालना होता है। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, कितनी तुम्हारे पास मुरादी है, हाँ कितना तुम्हारा इनकम है, बाबा कहते वो रोज संभालो। घाटा है व फायदा है, सौदागर हो ना, गायन है बाबा के लिए भी गायन है। बाबा क्या है, रत्नागर सौदागर और जादूगर, ये तीन महिमा शिव बाबा की है। तो गायन है ना कि बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रूढ़ बुद्धि नहीं है, श्रूढ़ बुद्धि माने इतनी तेज बुद्धि जो पूरा समझ जाए बाबा की एक एक लाइन में कितनी गहराई है। अविनाशी कोई सब कोई श्रूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, ऐसे भी है कई लोग। तो श्रूढ़ बुद्धि तो उसको अच्छी तरह से धारण करेगा, वो स्वरूप बनेगा, पर जो ऐसे ही है बस सुनते हैं खुशी होती है मुरली सुनी बस, परंतु धारण वो स्वरूप बने वो नहीं होता। इसलिए बाबा कहते शूढ़ बुद्धि सब नहीं है, एक कान से सुनते ही फिर दूसरे से निकल जाता है, झोली में छेद से निकल जाता है, बुद्धि रूपी झोली में छेद है, तो उसमें जो भी ज्ञान रत्न डाला वो फिर निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, इतना ज्ञान धन देते हैं जो वो सच्चे रत्न भविष्य में बन जाएंगे। तो इसीलिए अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, आत्मा रूप है और उनमें ज्ञान है तो बसंत है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, हाँ आत्मा का भी रूप है, भल आत्मा छोटी है तो रूप तो है ना, बिंदु रूप है। इसलिए हम ज्योमेट्री में ये बताते हैं, ज्योमेट्री उसमें ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में तो लाइन बनाएंगे पता चलेगा ऊपर नीचे, लेकिन ग्राफ में बिंदु भी होता है और उस बिंदु की कोई मेजरमेंट नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, डॉट इज दैट विच हैज नो मेजरमेंट्स, बस बिंदु डॉट, तो उसकी न लंबाई है न चौड़ाई है न कुछ भी नहीं है, तो फिर भी उसका अस्तित्व है, फिर भी उसका अस्तित्व है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनका रूप है, भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, हाँ दिखाई नहीं देती आत्मा, जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं, अब सोमनाथ मंदिर कितना विशाल मंदिर, तो वहाँ शिवलिंग है तो वो शिव की भक्ति करते हैं, तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, इतना बड़ा मंदिर उसने एक बिंदी रखी हो तो उसकी पूजा का कोई जैसे महत्व ही नहीं होगा, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। तो बाबा कहते सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना भी बड़ा बड़ा बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना भी बड़ा बड़ा बनाते हैं। यूं तो है छोटा, आत्मा इतनी छोटी, शिव बाबा भी बिंदु, परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना, तो मर्तबा ऊंचा होने के कारण उनका इतना बड़ा आज शिवलिंग बनाते हैं। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई मेरी प्राप्ति नहीं होती है, ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरनी है, तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के, आज बाबा ने शब्द कहा तुम्हारी चढ़ती कला है, तो तुम ब्राह्मण नंबर वन पहले नंबर के जिन हो। जिन को क्या काम दिया, बस चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो हम भी क्या करते हैं, अब हम चढ़ते हैं ऊपर सतयुग तक पहुंचते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं। तो तुम भी जिन हो, कहानी है ना, जिन को का, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो बाबा यहाँ कहते माया खा जाएगी, तो जिन बन करके चढ़ो और उतरो, चक्र फिराओ, सीढ़ी चढ़ो उतरो। तो बुद्धि में रहे में कितना ऊंचा था, फिर कैसे पांच स्वरूपों की स्मृति, ये भी जिन की स्मृति है ना, सदा वो बुद्धि में रहे तो और बातें बुद्धि में नहीं आएगी, नहीं तो फिर माया खा जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो जिन्होंने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। तो बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम फुल सीढ़ी चढ़ते उतरते हो, फुल शुरू से लेके नीचे तक अंत तक। दूसरे धर्म वाले फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते, वो केवल आधे तक आते हैं और फिर वो आधे में आते, आधा ही नीचे उतरते, फिर वो आधे तक ही जाते हैं, एकदम सतयुग तक नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने भी कहा कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो चढ़ते हो, जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, पूरी सीढ़ी शुरू से लेके अंत तक उस सीढ़ी का ज्ञान मिलने से बाबा कहते तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो फिर चढ़ते हो। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान ऑल माइटी हूँ। अब शिव बाबा सर्वशक्तिवान ऑल माइटी है, क्यों शिव बाबा कैसे ऑल माइटी है, सर्वशक्तिवान कैसे, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं किस आधार पर सर्वशक्तिवान हूँ, 100% पवित्रता है मेरी आत्मा में, तो मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, बिंदु हूँ पर बिंदु में सिंधु हूँ, अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, ये कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है अविनाशी पाठ। कितने कल्प बीते होंगे, कितने कल्प ये वो सीडी चली होगी या रिकॉर्ड चला होगा, पर कभी घिसा नहीं, कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता ही रहता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, शिव बाबा भी इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बिंदु में सिंधु है। तो जैसे बिंदु के लिए बताते हैं ना, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, माप नहीं कर सकते हैं, उतना ही फिर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माना उसकी भी कोई माप नहीं है, कितना होता है इन्फिनिटी पता ही नहीं, उसकी माप नहीं। फिर परंतु फिर भी कहते हैं जहाँ दो पैरेलल लाइन, जो समांतर वो लाइन होती है, वो जहाँ मिलती है वो इन्फिनिटी, परंतु उसकी माप नहीं है, पर मिलती जरूर है। तो इन्फिनिटी की भी माप है और बिंदु की भी माप है। तो देखो बाबा कहते हैं शिव बाबा बिंदु है लेकिन इन्फिनिट अनगिनत बेअंत उनमें गुण है। तो आत्मा बाबा कहते हैं इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी, बाबा भी कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ। यदि तुम बच्चे अभी समझते हो, तुम हो बेहद के बिंदी, हो बाबा बिंदी है, तुम भी बिंदी हो, तो अभी तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। बेहद के त्यागी और राज ऋषि, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं कौन? राज ऋषि कैसे बनेंगे? जब बाबा कहते हैं राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी राज और चंद्रवंशी राजा, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये राज ऋषि होते हैं जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। राजा जनक को भी दिखाते हैं ना, विदेह राजा था, राज ऋषि था, राजाई भी थी और ऋषि भी था। तो ये जहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, राजाई प्राप्त कर रहे हैं, परंतु पहले तो घर जाना है ना। हम जा रहे हैं खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना भी जरूर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। कल भी बाबा ने कितना विस्तार से समझाया, बस ये भारत ये रहेगा, बाकी तीन हिस्सा पानी हो जाना। तो बाबा कहते हमारा ही राज्य था, अब ये हो, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई, योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल, बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सुनाते हो, तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, इनका राज्य माना लक्ष्मी नारायण का राज्य माना हमारा राज्य था, इनका राज्य था। तो अभी बाबा कहते तुम जानते हो ये हमारा राज्य था, हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो ये भी याद आ गया, आ गया ना याद, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। अब जब हिस्ट्री रिपीट होती है पर हम उसमें हीरो हीरोइन है, ये ड्रामा के अंदर खेल के अंदर हम हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं। हम ही हार खाते हैं फिर हम ही जीत पाते हैं, इसीलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। हम ही जीत पाते हैं फिर हम ही हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन का ऐसा ही होता है ना पार्ट, पहले तो हीरो है फिर वो हार भी खाता है फिर जीत पा लेता है, वापस उसको सब मिल जाता है, तो हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अभी हम वनवा में हैं। याद रखो आज की मुरली का सार, हम सब वनवा में हैं, इसीलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम वनवा में हैं, साधारण रहना है, अभिमान कोई भी देह का कपड़ों का नहीं रखना है, कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है, त्यागी और राज ऋषि है, वनवा में है, आज का सार है मुरली का। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है, इसी नशे में रह पवित्र बनना है, ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित और नम्र चित्त भव। निमित उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। कराने वाला बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, तो अपना हर संकल्प और कर्म बाप को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित वो है जो झुकता है, जितना संस्कारों में किसमें जो जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। संस्कारों में झुकेंगे माना नम्रचित होंगे और संकल्पों में झुकेंगे, अपना नशा नहीं दिखाएंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना। हम झुक रहे हैं क्योंकि फिर वो हमारे आगे झुकेंगे। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी न हो, क्या संकल्प कभी ना आए कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, दूसरे भी तो हमारे आगे कुछ तो झुके, भले नहीं झुके कोई बात नहीं, सॉरी कर लो, माफी ले लो, कुछ तो झुके नहीं। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं। कईयों को कहा अच्छा चलो कुछ भी अभी सॉरी बोल दो, नहीं क्यों बोलूं सारू सर सॉरी, मैंने क्या किया, हाँ अपना अभिमान दिखाते हैं। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोग नहीं दिखाते हैं। उनको अंदर में है अभी मैं झुकूंगा फिर भविष्य में सब मेरे आगे झुकेंगे, तो अभी झुकने में कोई हर्जा नहीं है। कभी अपना रोग नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। झुकेंगे नहीं तो समस्या स्वरूप ही बनेंगे ना, तो अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प, हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, जो उससे तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, आवेश में आ जाते तो इसलिए तब तेज बोलते हैं। कभी भी गुस्सा धीरे होता है क्या, कोई गुस्सा करता है वो धीरे होता है क्या, कभी धीरे होगा तो गुस्सा ही नहीं होगा, गुस्सा तो हमेशा जोर से किया जाता है ना। तो अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है, ये समझ लो। तेज बोलना, आवेश में आना, ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर मुरली में बाबा इतनी ऊंची बातें सुनाते, इतनी धारणा युक्त बातें सुनाते। अच्छा, मधुबन निवासियों को तो व्हाट्सएप में मिल ही गया होगा समाचार कि सभी मधुबन निवासी भाई बहने और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने आज 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचे, वहां पर सौगात मिलेगी। तो सब मधुबन निवासी और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे, वहां सौगात मिलेगी। ओम शांति। चलो बाबा को